ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में आज संविधान दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। वे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समारोह में कहा कि संविधान भारत की शान है। संविधान को अंगीकार किए जाने की आज 75वीं वर्षगांठ है। सरकार ने इस अवसर पर आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान देश के हजारों वर्षों की परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। कोयला मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक परामर्श अभ्यास के अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और विकास संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे पर जनता से सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। इस संशोधन विधेयक के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों और संबंधित संशोधनों को तालिकाबद्ध करके मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने हाल ही में हुई मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की आज जांच शुरू की है। गृह मंत्रालय द्वारा अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मामले सौंपने का फैसला किए जाने के बाद NIA ने इन मामलों को फिर से दर्ज किया। 13 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामले फिर से दर्ज किए गए। निर्वाचन आयोग ने आज राज्यसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की। 3 सीटें आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से एक एक सीट है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 3 दिसंबर को जारी की जाएगी और महीने की 10 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। देश आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने हमले में बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बांग्लादेश में इस्कॉन पुंडरिक धाम के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के भक्तों और अनुयायियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ध्वनि ग्रेनेड दागे। ये अपने नेता की रिहाई की मांग को लेकर चटगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट के परिसर में एकत्र हुए थे। इससे पहले मंगलवार को चटगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें जेल भेजने का आदेश पारित किया था। तमिलनाडु मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर बना दबाव अगले 12 घंटों के दौरान गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके 2 दिन में श्रीलंका तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आज से मस्कट में शुरू हो गई है। टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत को कोरिया जापान के साथ पूल ए में रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।